और आइए अरपा रेडियो पर अब सुनते हैं कार्यक्रम भेंट मुलाकात योगेश के साथ।
श्रोताओं जय जोहार, आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 FM। मैं हूं योगेश और आपके साथ कार्यक्रम भेंट मुलाकात को लेकर हाजिर हूं। आप जानते ही हैं कि भेंट मुलाकात की इस सीरीज में हम अंग्रेजी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं SCERT रायपुर यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ की सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी, जिनसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और वे सारे सवाल हमारे श्रोताओं में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आए हैं। वो शिक्षक अपनी अंग्रेजी पढ़ाने की प्रैक्टिसेस में बहुत सारी समस्याएं पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान वे संध्या जी से चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि हम अंग्रेजी विषय में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को किसी एक्सपर्ट के माध्यम से दूर करें। संध्या जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है और आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम का प्रश्न लेता हूँ। और दूसरी कॉलर है हमारी वर्षा श्रीवास मैडम।
हेलो
हेलो, नमस्कार, मैं योगेश बोल रहा हूँ अरपा कम्युनिटी रेडियो से। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कृपया अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न हमें बताएं।
नमस्ते, मेरा नाम वर्षा श्रीवास है और मैं कुछ क्वेश्चन है मेरे
जी।
जैसे कि पहला है मेरा कि हम क्लास में कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि बच्चे इंग्लिश की क्लास में इंटरेस्ट ले। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हम बच्चों की हैबिट में कैसे लाए कि वो इंग्लिश में ही बातचीत करे। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इंग्लिश के पीरियड में, ताकि बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे।
जी, तो वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न मैं सीधे सीधे मैडम की ओर प्रेषित कर देता हूँ ताकि वो इसका बेहतर जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच।
फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग क्लासरूम्स की बात है
जी।
तो मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये कहा था कि क्लासरूम इंटरेस्टिंग हो, उसके लिए मैं बच्चों को बहुत अच्छे से जानूं। हमारे अलग अलग लेवल के बच्चों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। प्राइमरी के बच्चों की अगर हम देखें तो उनको खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। हाई स्कूल में अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं जंप करो या ये करो तो ये पॉसिबल नहीं है, उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बदल जाते हैं। तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि लेवल, आप किस लेवल के बच्चों को डील कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट इससे भी होता है कि हम, वो बच्चा किस जगह पे रहता है और किस वातावरण में वो रहता है और वो, उसके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के मोबाइल बहुत पसंद हो लेकिन हम क्लासरूम में वो ला नहीं सकते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ हम ये भी देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी नीड जो है वो उसको फुलफिल कर पा रही है या नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारे नियरली सारे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड या एक्टिविटीज के थ्रू, एक जगह बैठ के मैं अगर लेक्चर दूं तो वो उतना अच्छा मेरे पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा जितना कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होता है। दूसरा, इसलिए भी मैं एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स की बात कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है इस स्किल सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को खुद आके, खुद बोल के, खुद पढ़ के, खुद को उस लैंग्वेज में लाने के बाद ही वो लैंग्वेज सीख पाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलती रहूं और वो सुनता रहे और वो लैंग्वेज सीख जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे वो लैंग्वेज के थ्रू जाना पड़ेगा तभी वो लैंग्वेज सीख पाएगा। अदरवाइज यही होगा कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ और किसी को खड़ा करके बोल रही हूँ, देख मैं स्विमिंग कर रही हूँ, देखो बेटा, और ये स्विमिंग होता है, और थोड़ी देर बाद बोलूं चलो तुमने तो देख लिया, अब तुम स्विम करके बता दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक्टिविटीज डिजाइन किए जाते हैं और ये एक्टिविटीज टेलर्ड एक्टिविटीज होते हैं जो एक ऑब्जेक्टिव को लेके उसका डिजाइन किया जाता है
जी।
दूसरा, एक और चीजें जो है जो गेम्स के थ्रू हम करते हैं, तो ये टेलर्ड गेम्स या टेलर्ड एक्टिविटीज हम बनाए तक जो बच्चों के लेवल को सूट करें। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम अंताक्षरी से कर सकते हैं, हॉपस्कॉच से कर सकते हैं, जो लंगड़ी बिल्लस की बात हम करते हैं जो गांवों में दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो खेलों को क्लासरूम में लाएं और उन खेलों के माध्यम से हम भाषा को सिखाने की कोशिश करें तो शायद हम बच्चों को बहुत अच्छे से भाषा सिखा सकते हैं। बट बनिस्पत ये है कि वो हम उस भाषा के जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी पोएम्स हैं, उसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट चेंज करें या ट्रांसलेट करें। जैसे हमारे पास बहुत सारे भाषाओं के गेम्स है, कुछ जैसे पोषंपा भाई पोषंपा डाकुओं ने क्या किया वो एक है, एंड वो है राजा राजा बिमला बाजा नगरी में चो। तो इन सारे चीजें जो है जो बच्चे रोज खेलते हैं और शायद आज ये सब दिखते भी नहीं है जो पहले दिखा करते थे, वो फिर से हम अगर क्लासरूम्स में लाते हैं तो बच्चों को थ्रू गेम्स भी हम ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। बट देन ये सारी चीजें हम उनको प्रैक्टिस में के लिए ज्यादा यूज करें ताकि लैंग्वेज जो मैं कह रही हूँ कि स्किल बेस्ड है, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको मौका दीजिए वो भाषा का यूज करें, तो आगे चल के वो इस भाषा को इंटरेस्टिंग तरीके हम एक माध्यम देंगे इंटरेस्ट का और वो भाषा सीखने में उनको मदद करेगी।
हाँ, मतलब तो, मैं एक 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 बिंदु पर इस बात अगले प्रश्न की ओर ले जाऊंगा आपको, वो ये मेरे ये समझ में आता है आपकी इस पूरी आपके इस पूरे जवाब से कि पूरी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे को शामिल भी करें। हाँ, जब हम एक किसी आइलैंड पर खड़े हो जाता है टीचर और बच्चे बहुत दूरी में रहते हैं तो शायद वो इंटरेस्टिंग चीजें भी क्रिएट नहीं हो पाती हैं और उस पूरी प्रोसेस में वो शामिल भी नहीं होता है
जी।
शायद आप यही कहना चाह रहे
हैं, और एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते।
एग्जैक्टली जी, इनका ही दूसरा क्वेश्चन था कि वो हैबिट में कैसे लाएं।
जैसे कोई भी स्किल को हैबिट में लाने के लिए उस स्किल की बार बार हम एक्सपीरियंस करें, एक्सपोजर दें। जैसे ब्रश भी अगर हमें करना सिखाना है बच्चों को तो रोज उसके पीछे लगना पड़ता है कि बेटा सुबह हो गया ब्रश कर लो ब्रश कर लो ब्रश कर लो, और उसके बाद शायद बहुत दिन बाद हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ हैबिट फॉर्मेशन में कि जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस में किस तरह हेल्प करेगा। हैबिट फॉर्मेशन के समय हम एज टीचर्स हमारा क्या रोल होगा ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एज अ पेरेंट जो रोल पेरेंट्स को जो डेली हैबिट्स बिल्डअप करने में जो पेरेंट का रोल होता है वो अगर टीचर्स वो रोल में आए तो शायद हैबिट वो लैंग्वेज उनके हैबिट में आएगा।
बिल्कुल, मतलब ये जो पहला पहला प्रश्न था और उसके जवाब में आपका जो उत्तर था ये लगता है वैसी ही कोई बात है कि वो जो स्कूल और स्कूल के उसका अपना वातावरण दोनों में फर्क तो होना ही नहीं चाहिए।
और दूसरा एक और चीज मुझे ये बताना पड़ेगा, मैं बताना चाहूंगी कि जो बच्चा है उसको हर समय ये पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक है जो मुझे हर समय संभालेगा। जैसे आप एक कभी भी साइकिल चलाने की सीखने की प्रक्रिया को अगर आप पलट के अपने छोटपन के बचपन की बात को याद करेंगे तो आपको लगेगा, आपको याद आएगा कि आपके पीछे कोई दौड़ता रहा होगा कैरियर पकड़ के कि देख बेटा तू गिरेगा नहीं, मैं हूँ, आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड यू, कि तुम जैसे भी गलती करोगे अगर होता है तो मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। वो सपोर्ट सिस्टम अगर एज अ टीचर स्ट्रांगली देता है बच्चों को और वो सपोर्ट सिस्टम की गिरने से कुछ नहीं होता, आप आगे फिर से चल के आगे फिर, आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, कोई पेरेंट ऐसा नहीं करता बेटा तू गिर गया तो तेरे को अब साइकिल चलाने की नहीं आता, मैं तेरे को साइकिल चलाने नहीं दूंगा। जबकि लैंग्वेज क्लासेस में ये होता है कि बेटा तू तो तेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता तो क्या फायदा, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं तो मैं समझ में नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आएगा वाला कहीं ना कहीं बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन में या बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में एक ब्लॉकेट की तरह काम करता है जो कि हेल्प करेगा, जो कि आगे चल के बच्चा लैंग्वेज बोलने के काबिल में कहीं ना कहीं काबिल नहीं होता, नहीं बोलूंगी, लैंग्वेज बोलने में हिचकिचाता है कि मेरे से गलती हो। सबसे बड़ा ये रहता है कि बच्चों से मैं पूछूं कि क्यों नहीं बोलते, गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी वाले के कारण आज के डेट पे हमारे बच्चे बोलना बंद कर दिए भाषा। तो ये चीज एज अ टीचर हम सपोर्ट सिस्टम, मैं ये नहीं कह रही सपोर्ट सिस्टम का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप खड़े रहो और उसको हेल्प करो, मेरा ये है कि आप उसको बताओ कि गलतियां होती है, गलतियां होंगी ही, बिना गलती का कुछ हो नहीं सकता, आप अपने मदर टंग भी बोलोगे तो उसमें गलतियां होंगी, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे लैंग्वेज को लेके आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। एंड हैबिट फॉर्मेशन इसी को आगे चल के लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है।
वर्षा जी का तीसरा एक मुद्दा था जो उन्होंने पूछा था हमसे कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच कन्वर्सेशन कैसा हो कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसे आप कैसे एड्रेस करती हैं?
कन्वर्सेशन कैसा हो कि कम्युनिकेशन गैप ना हो? कम्युनिकेशन गैप होता ही इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को बच्चों के शूज में नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है और वहां पे जो है वो अभी उसको उसको कुछ नहीं आता है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कुछ नहीं आता, नहीं आता है पर वो बोलेगा नहीं क्योंकि जो भी रीजन है। तो ये सारी चीजें अगर हम एज टीचर्स हटा देते हैं, और कम्युनिकेशन की बात अगर मैं कहती हूँ तो मुझे दो चीजें तीन चीजें इसमें यहाँ पे बोलनी है। पहला तो ये है कि जब बच्चों को एज लिटरेट पेरेंट्स हमारे घर के भी बच्चे जो होते हैं उनसे भी हम बात करते हैं, तो जैसे ही वो प्राइमरी स्कूल से होके आता है, पहले दिन दो तीन दिन स्कूल से वापस आता है, तो हम दुनिया भर बताते हैं कि इसको अंग्रेजी आती है, इसको पूछ ले, इसको पूछो व्हाट इज योर नेम। तो जैसे ही हमारे घर में कोई भी आता है उससे यही प्रश्न पूछता है व्हाट इज योर नेम। इस बच्चे को ये समझ में आता है कि ये जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ये इसलिए नहीं पूछ रहे कि ये मुझसे जानकारी चाह रहे, ये मुझसे मेरे इंग्लिश के टेस्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे कितनी अंग्रेजी आती है इसका टेस्ट कर रहे हैं ये। दूसरा अगर ये होता है, दूसरे एज पेरेंट्स लिटरेट पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, टीचर्स की नहीं कर रही मैं अभी, क्योंकि ये टीचर्स पे भी लागू हो जाता है कि दूसरा ये है कि अगर मैं बच्चों से ये पूछती हूँ कि व्हाट इज योर नेम और बच्चा ने बोला रवि, तो एज पेरेंट लिटरेट पेरेंट मैं पूछती हूँ क्यों तुझे पूरा आता है ना, पूरा बोल। तो वो पूरा बोल के चक्कर में इंग्लिश को एज इंग्लिश इज कंप्लीट सेंटेंस ये समझ में आता है। हिंदी में अगर बच्चा पूछता है व्हाट इज योर नेम, किसी बच्चे से पूछा जाता है और वो रवि बोलता है तो सामने वाला उससे संतुष्ट होता है।
हाँ।
लेकिन अंग्रेजी में ये संतुष्टि उसका नहीं होती है, उसे पूरे वाक्य में चाहिए होता है। तो यहाँ से वो शुरू होती है कि अंग्रेजी जो है कंप्लीटनेस है, अंग्रेजी जो है करेक्टनेस है, और अंग्रेजी बच्चे के हिसाब से कंक्लूजन ये निकालता है अंग्रेजी एक लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश ये एक टेस्टिंग है जिसमें हर कोई मुझे टेस्ट करने की कोशिश करता है और टेस्ट करने के लिए ये भाषा का प्रयोग होता है। ये चीज अगर मैं हटा देती हूँ अपने डेली लाइफ से कि इंग्लिश एज अ टेस्टिंग हटा के इंग्लिश एज फॉर कन्वर्सेशन फॉर कम्युनिकेशन तक सीमित करती हूँ और हर बच्चे का फ्रेजेस में वर्ड्स में आंसर को एक्सेप्ट करती हूँ तो शायद मैं फर्स्ट स्टेप डालू आगे बढ़ाऊंगी लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में।
ये तो बहुत काम की बात है क्योंकि टेस्टिंग टेस्टिंग में गलती की संभावनाएं ज्यादा होंगी और वो गलती होने का एहसास जो होता है वही शायद उसे अंग्रेजी से दूर करता चला जाएगा। ये बहुत काम का उत्तर है हमारा, मुझे लगता है वर्षा जी भी इस उत्तर से संतुष्ट हुई होंगी। वर्षा जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में प्रश्न पूछा।
और संध्या जी को खूब सारा धन्यवाद देते हुए आज की बात यहाँ रोकते हैं इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। ट्यून करते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। बाय बाय।
भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी के साथ योगेश ने की बातचीत। ये बातचीत फोन इन कार्यक्रम पर आधारित थी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंग्रेजी का पठन पाठन कैसे हो, इस विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं सुश्री आई संध्या रानी। इस श्रृंखला का अगला अंक सुनने के लिए सुनते रहिए अरपा रेडियो।
ये है अरपा रेडियो।